Cambridge Assessment, International Education, Cambridge IGCSE, November 2023 examination, in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
हेलो संजू, कैसे हो? तुम्हारी ट्यूटर का फोन आया था. उन्हें शाम को 5 बजे अपने डॉक्टर के पास जाना है, वैसे ही अपनी सालाना जांच के लिए. उन्होंने तुम्हें 4 बजे बुलाया है. इसका मतलब है कि तुम्हारे पास आज स्कूल से घर आने का वक्त नहीं होगा. सीधे ट्यूटर के पास चले जाना. किसी दोस्त की कार में लिफ्ट मिल जाए तो ठीक है, वरना बस ले लेना. कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना. बाय. हेलो संजू, कैसे हो? तुम्हारी ट्यूटर का फोन आया था. उन्हें शाम को 5 बजे अपने डॉक्टर के पास जाना है, वैसे ही अपनी सालाना जांच के लिए. उन्होंने तुम्हें 4 बजे बुलाया है. इसका मतलब है कि तुम्हारे पास आज स्कूल से घर आने का वक्त नहीं होगा. सीधे ट्यूटर के पास चले जाना. किसी दोस्त की कार में लिफ्ट मिल जाए तो ठीक है, वरना बस ले लेना. कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना. बाय.
संवाद दो.
मोहित, कॉलेज पत्रिका के अगले अंक की सामग्री जुटानी है.
अरे हाँ, किसका साक्षात्कार लें?
अपने पुस्तकालय की अध्यक्ष कैसी रहेगी?
लेकिन आनंद का लेख तो पुस्तकालय पर ही है. माली भैया से बात कर लें तो?
वाह, वह तो वाकई मजेदार रहेगा. और आवरण पृष्ठ का क्या करें?
खेल दिवस की तस्वीरें बहुत सुंदर आई हैं.
पर खेल की तस्वीर तो अभी लगाई थी. नई प्रयोगशाला कैसी रहेगी?
ठीक है, उसी की तस्वीर लगाते हैं.
मोहित, कॉलेज पत्रिका के अगले अंक की सामग्री जुटानी है.
अरे हाँ, किसका साक्षात्कार लें?
अपने पुस्तकालय की अध्यक्ष कैसी रहेगी?
लेकिन आनंद का लेख तो पुस्तकालय पर ही है. माली भैया से बात कर लें तो?
वाह, वह तो वाकई मजेदार रहेगा. और आवरण पृष्ठ का क्या करें?
खेल दिवस की तस्वीरें बहुत सुंदर आई हैं.
पर खेल की तस्वीर तो अभी लगाई थी. नई प्रयोगशाला कैसी रहेगी?
ठीक है, उसी की तस्वीर लगाते हैं.
संवाद तीन.
सहारा के रेगिस्तान में एक लंबी दूरी की दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसे रेत की मैराथन कहते हैं. उत्तरी अफ्रीका के देश मोरक्को में होने वाली इस सालाना दौड़ में भाग लेने वालों के सोने के लिए तंबुओं का प्रबंध दौड़ के आयोजक करते हैं. प्रतियोगियों को अपनी जरूरत का सारा सामान पीठ पर लादकर दौड़ना पड़ता है. सामान का वजन 15 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए. दौड़ के दौरान पीने के पानी का प्रबंध भी आयोजक ही करते हैं. धावक MP3 प्लेयर भी साथ लेकर आते हैं ताकि सुनसान रेगिस्तान में दौड़ते समय मन लगा रहे। सहारा के रेगिस्तान में एक लंबी दूरी की दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसे रेत की मैराथन कहते हैं। उत्तरी अफ्रीका के देश मोरक्को में होने वाली इस सालाना दौड़ में भाग लेने वालों के सोने के लिए तंबुओं का प्रबंध दौड़ के आयोजक करते हैं। प्रतियोगियों को अपनी जरूरत का सारा सामान पीठ पर लादकर दौड़ना पड़ता है। सामान का वजन 15 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। दौड़ के दौरान पीने के पानी का प्रबंध भी आयोजक ही करते हैं। धावक MP3 प्लेयर भी साथ लेकर आते हैं ताकि सुनसान रेगिस्तान में दौड़ते समय मन लगा रहे।
संवाद 4।
सुनो, आज शाम उस नए रेस्तरां में चलते हैं।
मन तो मेरा भी है, सुना है वहां कुछ नई किस्म का खाना मिलता है।
हाँ, बताते हैं कि इन्होंने कुछ नए पकवान बनाए हैं जिनमें भारतीय और चीनी खाने का मिश्रण है।
अरे हाँ, आपके पिताजी भी तो ले गए थे इसी तरह के एक रेस्तरां में।
हाँ, वहाँ हमने इतालवी और जापानी खाने के मिश्रण का स्वाद लिया था।
ठीक है, मैं मंदिर आ जाती हूँ, वहाँ से पैदल चलेंगे।
मंदिर दूर पड़ेगा, झील पर आ जाओ।
ठीक है।
सुनो, आज शाम उस नए रेस्तरां में चलते हैं।
मन तो मेरा भी है, सुना है वहां कुछ नई किस्म का खाना मिलता है।
हाँ, बताते हैं कि इन्होंने कुछ नए पकवान बनाए हैं जिनमें भारतीय और चीनी खाने का मिश्रण है।
अरे हाँ, आपके पिताजी भी तो ले गए थे इसी तरह के एक रेस्तरां में।
हाँ, वहाँ हमने इतालवी और जापानी खाने के मिश्रण का स्वाद लिया था।
ठीक है, मैं मंदिर आ जाती हूँ, वहाँ से पैदल चलेंगे।
मंदिर दूर पड़ेगा, झील पर आ जाओ।
ठीक है।
संवाद 5।
आज के कार्यक्रम में हम ऐसी दो स्थानीय कंपनियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हाल में ही कारोबार शुरू किया और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कारोबार के पुरस्कार के लिए चुनी गईं। इनमें से पहली कंपनी का नाम है प्रीति भोज, जो निजी और सामाजिक आयोजनों के लिए खाने पीने का प्रबंध करती है। प्रतियोगिता के निर्णायकों ने इस कंपनी के कारोबार की खूब सराहना की, लेकिन पुरस्कार के लिए बाजी मारने में सफल रही कार शेयरिंग कंपनी साझा कार, जिसके तेजी से फैलते कारोबार ने शहर के प्रदूषण को कम करने में भी सहायता की है। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी दो स्थानीय कंपनियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हाल में ही कारोबार शुरू किया और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कारोबार के पुरस्कार के लिए चुनी गईं। इनमें से पहली कंपनी का नाम है प्रीति भोज, जो निजी और सामाजिक आयोजनों के लिए खाने पीने का प्रबंध करती है। प्रतियोगिता के निर्णायकों ने इस कंपनी के कारोबार की खूब सराहना की, लेकिन पुरस्कार के लिए बाजी मारने में सफल रही कार शेयरिंग कंपनी साझा कार, जिसके तेजी से फैलते कारोबार ने शहर के प्रदूषण को कम करने में भी सहायता की है।
संवाद 6।
हेलो सर, मैंने पाठ्यक्रम पुस्तिका पढ़ ली।
ठीक है सुनीता, क्या फैसला किया, कौन सा विषय चुना?
सर, जनवरी तक तो मैं अर्थशास्त्र के लिए मन नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मुझे इसी का स्नातक बनना चाहिए। मैं हमेशा कानून पढ़ने के बारे में सोचती थी, अपनी माँ की तरह, पर अब मेरा विचार बदल गया है।
ठीक है, मेरे विचार में तुम्हें अपने माता पिता से सलाह करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग फरवरी में मिलेंगे और आवेदन प्रक्रिया पर बात करेंगे।
ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, मैंने पाठ्यक्रम पुस्तिका पढ़ ली।
ठीक है सुनीता, क्या फैसला किया, कौन सा विषय चुना?
सर, जनवरी तक तो मैं अर्थशास्त्र के लिए मन नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मुझे इसी का स्नातक बनना चाहिए। मैं हमेशा कानून पढ़ने के बारे में सोचती थी, अपनी माँ की तरह, पर अब मेरा विचार बदल गया है।
ठीक है, मेरे विचार में तुम्हें अपने माता पिता से सलाह करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग फरवरी में मिलेंगे और आवेदन प्रक्रिया पर बात करेंगे।
ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न 7।
भारत के जाने माने संगीतकार अनिल बिस्वास के एक संस्मरण को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। यह संस्मरण आपको दो बार सुनाया जाएगा।
हमारे समाज में पहले मिल बैठने की एक परंपरा थी। लोग साथ साथ बैठते थे, बातें करते थे, साथ साथ खाते पीते थे। वह परंपरा अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, यानी महफिल की परंपरा, बांग्ला में जिसे जलसा कहते हैं। हमारा गाना बजाना भी उसी तरीके से होता था। महफिल में बैठने से एक दूसरे से भावनाओं का आदान प्रदान भी संभव था। हिंदुस्तानी संगीत का विकास ही भावनात्मक स्तर पर लोगों को आपस में जोड़ने और मन के उन गहरे भावों का संप्रेषण करने के लिए हुआ है जिन्हें भाषा के माध्यम से संप्रेषित नहीं किया जा सकता। लोग पूछते हैं, पहले के संगीत में और आज के संगीत में क्या फर्क आ गया है? मैं कहता हूं, संगीत में कुछ फर्क नहीं आया, बस उसका स्वरूप बदल गया है। हम पहले अपनी आत्मा को सामने रखकर गाते थे, भगवान को सामने रखकर गाते थे। लोग यहां तक कहते थे कि संगीत के माध्यम से आप ईश्वर को पा सकते हैं, यानी अगर ताल बन जाए तो वहां तक पहुंचने का सोच सकते हैं। दूसरी तरफ आज का संगीत दैहिक हो गया है, सिर्फ शरीर नाचता है, मन नहीं नाचता। संगीत के इस बदलते रूप में मैं फिल्मी दुनिया में अपने आप को अयोग्य समझने लगा हूं। यही कारण है कि मैं वह दुनिया छोड़कर चला आया, क्योंकि आज जो संगीत रचा जा रहा है वह मुझसे नहीं हो सकता। हम लोग आमतौर से अमूर्त यानी शब्दहीन संगीत में गाते हैं, इसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। इसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ शब्दों का भ्रम होता है। मेरी जिंदगी संगीत के बजाय एक गीतकार के रूप में शुरू हुई। मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों का साथ मिला, जैसे सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा और अमृतलाल नागर। मैं गाया भी करता था, लेकिन किसी को गाना सिखाते हुए एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब व्यावसायिक रूप में कुछ नहीं गाऊंगा, सिर्फ संगीत निर्देशन ही करूंगा।
अभ्यास दो की यह वार्ता अब आप फिर से सुनेंगे।
हमारे समाज में पहले मिल बैठने की एक परंपरा थी। लोग साथ साथ बैठते थे, बातें करते थे, साथ साथ खाते पीते थे। वह परंपरा अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, यानी महफिल की परंपरा, बांग्ला में जिसे जलसा कहते हैं। हमारा गाना बजाना भी उसी तरीके से होता था। महफिल में बैठने से एक दूसरे से भावनाओं का आदान प्रदान भी संभव था। हिंदुस्तानी संगीत का विकास ही भावनात्मक स्तर पर लोगों को आपस में जोड़ने और मन के उन गहरे भावों का संप्रेषण करने के लिए हुआ है जिन्हें भाषा के माध्यम से संप्रेषित नहीं किया जा सकता। लोग पूछते हैं पहले के संगीत में और आज के संगीत में क्या फर्क आ गया है। मैं कहता हूं संगीत में कुछ फर्क नहीं आया, बस उसका स्वरूप बदल गया है। हम पहले अपनी आत्मा को सामने रखकर गाते थे, भगवान को सामने रखकर गाते थे। लोग यहां तक कहते थे कि संगीत के माध्यम से आप ईश्वर को पा सकते हैं, यानी अगर ताल बन जाए तो वहां तक पहुंचने का सोच सकते हैं। दूसरी तरफ आज का संगीत दैहिक हो गया है, सिर्फ शरीर नाचता है, मन नहीं नाचता। संगीत के इस बदलते रूप में मैं फिल्मी दुनिया में अपने आप को अयोग्य समझने लगा हूं। यही कारण है कि मैं वह दुनिया छोड़कर चला आया, क्योंकि आज जो संगीत रचा जा रहा है वह मुझसे नहीं हो सकता। हम लोग आमतौर से अमूर्त यानी शब्दहीन संगीत में गाते हैं, इसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। इसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ शब्दों का भ्रम होता है। मेरी जिंदगी संगीत के बजाय एक गीतकार के रूप में शुरू हुई। मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों का साथ मिला, जैसे सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा और अमृतलाल नागर। मैं गाया भी करता था, लेकिन किसी को गाना सिखाते हुए एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब व्यावसायिक रूप में कुछ नहीं गाऊंगा, सिर्फ संगीत निर्देशन ही करूंगा। अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास तीन प्रश्न 8 से 15।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो में काम करने वाले युवा इंजीनियर नीलेश हिरवे के साथ तरुण भारत की संवाददाता साक्षी चौबे की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
नीलेश, आप भारत की अंतरिक्ष विज्ञान संस्था इसरो में काम कर रहे हैं और आपका बचपन मुंबई की एक चाल में बीता। बताइए कि चाल से अंतरिक्ष की यात्रा की शुरुआत कैसे और कहां से हुई?
साक्षी जी, कहानी की शुरुआत मुंबई की पवई चाल से हुई, जहां मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाले लगभग 3,000 लोग रहते थे। चाल में पढ़ाई लिखाई का माहौल कतई नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी सरकारी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाते थे। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा चाल से निकलकर कहीं बेहतर जीवन गुजारे।
और आप क्या चाहते थे?
मुझे चाल के बच्चों की तरह धमा चौकड़ी मचाना पसंद नहीं था। एक ही कमरे का घर था। स्कूल से लौटने के बाद मैं हमारे कमरे के एक कोने में रखे पलंग पर बैठकर स्कूल के काम में लग जाता। मैं इंजीनियर बनना चाहता था। 10वीं करने के बाद मैंने पापा से कहा कि मेरी कोचिंग करवा दीजिए, पर कोचिंग में मोटी फीस लगती थी। वे मुझे एक सलाहकार के पास ले गए। उसने कुछ देर बात करने के बाद कह दिया कि मुझमें इंजीनियर बनने की काबिलियत नहीं है। मुझे उसकी बात पर बहुत रोना आया, लेकिन मैंने गांठ बांध ली कि अब तो इंजीनियर बनकर ही रहूंगा, चाहे जो हो।
इस पर आपके पापा ने क्या कहा?
उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं पढ़ाई में जुट गया और 12वीं के बाद मुझे एक तकनीकी कॉलेज में इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के लिए दाखिला मिल गया। पर वहां जाते ही एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। एक तो इंजीनियरिंग की सारी किताबें अंग्रेजी में थी, ऊपर से प्राध्यापक लोग भी अंग्रेजी में ही पढ़ाते थे। मेरी पढ़ाई मराठी माध्यम से हुई थी, इसलिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी।
तो इस मुसीबत का हल कैसे निकाला?
एक प्राध्यापक थे जो हमारी चाल के पास ही रहते थे, मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, शब्दकोश की मदद लो और फिर भी समझ ना आए तो बेहिचक मेरे पास आओ, मैं मदद करूंगा। उसके बाद दिन रात लगकर पढ़ाई की। नौकरियों के बुलावे भी आए, लेकिन मैंने स्नातक बनने के लिए नवी मुंबई के इंदिरा गांधी कॉलेज में दाखिला ले लिया। दोस्त और घर वाले हंसते थे कि ये लड़का नौकरी छोड़ किताबों में खोया रहना चाहता है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे सपने देखने की आजादी दे रखी थी और मैं अपने सपने के पीछे दौड़ रहा था।
और क्या था वो सपना? इंजीनियर तो आप बन चुके थे।
इंजीनियरिंग का सपना किसी बड़े राष्ट्रीय संस्थान में काम करने के सपने में बदल गया था। इंजीनियर बनने के बाद मैंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना और बड़े बड़े संस्थानों में आवेदन करना शुरू किया। हैदराबाद जाकर थोड़ी कोचिंग भी ली। अंत में जाकर इसरो में आवेदन किया और वहां मेरा चयन भी हो गया। जब लोगों ने मेरी मां को इसरो के बारे में बताया तो वे फूली न समाई और मुझे गले से लगा लिया। इस तरह चाल का एक बच्चा अंतरिक्ष तक जा पहुंचा।
नीलेश, आपकी यात्रा की कहानी दिलचस्प भी है और प्रेरणादायक भी। सुनाने के लिए धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास तीन की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। नीलेश आप भारत की अंतरिक्ष विज्ञान संस्था इसरो में काम कर रहे हैं और आपका बचपन मुंबई की एक चाल में बीता। बताइए कि चाल से अंतरिक्ष की यात्रा की शुरुआत कैसे और कहां से हुई?
साक्षी जी, कहानी की शुरुआत मुंबई की पवई चाल से हुई, जहां मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाले लगभग 3,000 लोग रहते थे। चाल में पढ़ाई लिखाई का माहौल कतई नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी सरकारी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाते थे। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा चाल से निकलकर कहीं बेहतर जीवन गुजारे।
और आप क्या चाहते थे?
मुझे चाल के बच्चों की तरह धमा चौकड़ी मचाना पसंद नहीं था। एक ही कमरे का घर था। स्कूल से लौटने के बाद मैं हमारे कमरे के एक कोने में रखे पलंग पर बैठकर स्कूल के काम में लग जाता। मैं इंजीनियर बनना चाहता था। 10वीं करने के बाद मैंने पापा से कहा कि मेरी कोचिंग करवा दीजिए, पर कोचिंग में मोटी फीस लगती थी। वे मुझे एक सलाहकार के पास ले गए। उसने कुछ देर बात करने के बाद कह दिया कि मुझमें इंजीनियर बनने की काबिलियत नहीं है। मुझे उसकी बात पर बहुत रोना आया, लेकिन मैंने गांठ बांध ली कि अब तो इंजीनियर बनकर ही रहूंगा, चाहे जो हो।
इस पर आपके पापा ने क्या कहा?
उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं पढ़ाई में जुट गया और 12वीं के बाद मुझे एक तकनीकी कॉलेज में इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के लिए दाखिला मिल गया। पर वहां जाते ही एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। एक तो इंजीनियरिंग की सारी किताबें अंग्रेजी में थीं, ऊपर से प्राध्यापक लोग भी अंग्रेजी में ही पढ़ाते थे। मेरी पढ़ाई मराठी माध्यम से हुई थी, इसलिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी।
तो इस मुसीबत का हल कैसे निकाला?
एक प्राध्यापक थे जो हमारी चाल के पास ही रहते थे, मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, शब्दकोश की मदद लो और फिर भी समझ ना आए तो बेहिचक मेरे पास आओ, मैं मदद करूंगा। उसके बाद दिन रात लगकर पढ़ाई की। नौकरियों के बुलावे भी आए, लेकिन मैंने स्नातक बनने के लिए नवी मुंबई के इंदिरा गांधी कॉलेज में दाखिला ले लिया। दोस्त और घर वाले हंसते थे कि ये लड़का नौकरी छोड़ किताबों में खोया रहना चाहता है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे सपने देखने की आजादी दे रखी थी और मैं
अपने सपने के पीछे दौड़ रहा था।
और क्या था वो सपना? इंजीनियर तो आप बन चुके थे।
इंजीनियरी का सपना किसी बड़े राष्ट्रीय संस्थान में काम करने के सपने में बदल गया था। इंजीनियर बनने के बाद मैंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना और बड़े बड़े संस्थानों में आवेदन करना शुरू किया। हैदराबाद जाकर थोड़ी कोचिंग भी ली। अंत में जाकर इसरो में आवेदन किया और वहां मेरा चयन भी हो गया। जब लोगों ने मेरी मां को इसरो के बारे में बताया तो वे फूली न समाई और मुझे गले से लगा लिया। इस तरह चाल का एक बच्चा अंतरिक्ष तक जा पहुंचा।
नीलेश, आपकी यात्रा की कहानी दिलचस्प भी है और प्रेरणादायक भी। सुनाने के लिए धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद। अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4 प्रश्न 16 से 23।
औद्योगिक विकास पर दो मित्रों की बहस को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए, बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। यह बहस आपको दो बार सुनाई जाएगी।
सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को ही विकास मानकर पूरी दुनिया में औद्योगीकरण और व्यापार को बढ़ावा दिया गया। जनता के लिए जरूरत के अनुसार उत्पादन की जगह अति उत्पादन करके बाजारों को भर दिया गया। यह कहा गया था कि औद्योगीकरण में ही दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन जो कुछ हुआ उसने यह सिद्ध किया कि औद्योगीकरण समाधान नहीं बल्कि खुद एक समस्या है। पर्याप्त उत्पादन के बावजूद भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं दुनिया की आधी आबादी को नसीब नहीं हैं। अधिकाधिक मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण और उद्योगों को सस्ती कृषि उपज उपलब्ध कराने के लिए किसानों का शोषण किया जाता है, जो आर्थिक विषमता का एक प्रमुख कारण है।
आर्थिक विषमता वाली बात सही है, लेकिन दुनिया में इस समय ऐसा कोई देश नहीं है जिसने औद्योगिक विकास की जगह प्रकृति पर आधारित विकास के मार्ग पर चलकर उन्नति की हो। मंगोलिया, सूडान और माली जैसे जो देश औद्योगिक विकास और विश्व व्यापार की दौड़ में पीछे रहे, उनकी दशा औद्योगिक विकास में आगे रहने वाले देशों की तुलना में बहुत ही खराब है। अमेरिका, यूरोप और भारत में आर्थिक विषमता भले बड़ी हो, लेकिन उसका कारण सभी का पिछड़े रह जाना नहीं बल्कि कुछ का बहुत आगे निकल जाना और कुछ का बहुत पीछे रह जाना है। इसका सारा दोष समाजों और सरकारों को दिया जाना चाहिए जो सामाजिक न्याय की नीतियों पर चलने और सबको समान अवसर देने में नाकाम रहे हैं।
औद्योगीकरण के लिए जल, जंगल, जमीन, समुद्र, खनिज और खनिज तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है और ये संसाधन उन पर निर्भर आदिवासियों और किसानों से छीनकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। औद्योगीकरण की प्रक्रिया में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई गुणा अधिक किसानों, दस्तकारों और कामगारों के रोजगार छीने जाते हैं। जीविका का आधार छीने जाने और मनुष्य के रूप में उपलब्ध जीवित ऊर्जा के बदले मशीनीकरण के बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है। अब कृत्रिम बुद्धि से चलने वाली चतुर मशीनों के विकास से और जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रवेश से रोबोट और क्लोन ही सारे काम करने लगेंगे और बेरोजगारी का संकट और भी बढ़ेगा।
प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत तो हर तरह के विकास के लिए होती है। प्रकृति के साथ जीवन बिताने की बातें करना आसान है, पर एक बार जरा औद्योगिक विकास से मिली सारी सुख सुविधाओं के बिना जीकर तो दिखाइए। रही मशीनीकरण से बेरोजगारी बढ़ने की बात, तो हम सब जानते हैं कि कारखाने बनने से रोजगार घटे नहीं, बढ़े हैं। खेती और दस्तकारी करने वाले करोड़ों लोगों को उद्योगों में काम मिला। जब चतुर मशीनें बनेंगी तो उन्हें चलाने और बनाने वाले प्रशिक्षित लोगों की जरूरत पड़ने लगेगी। रोजगार कम नहीं होंगे, उनके लिए दक्षता का स्तर बढ़ता जाएगा।
लेकिन औद्योगीकरण की अंधी दौड़ ने सबसे बड़ा नुकसान हमारे पर्यावरण का किया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु में परिवर्तन लाकर औद्योगीकरण ने हमारी पृथ्वी के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है। बदलते मौसमों के कारण खेती भी प्रभावित हो रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है। पूरी दुनिया प्रदूषण के संकट और जल संकट से जूझ रही है। विडंबना की बात यह है कि लोग और उनकी सरकारें ये सब जानती हैं, फिर भी पर्यावरण को बचाने के लिए उद्योग संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ताकत के सामने लाचार साबित हो रही हैं।
ये सही है कि औद्योगिक विकास जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के विनाश का प्रमुख कारण है, फिर भी उसकी दिशा के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जिस विज्ञान से हमें जलवायु में हो रहे परिवर्तन का और पर्यावरण को हो रही क्षति का पता चला है, उसी विज्ञान ने पानी, पवन और सूर्य से मिलने वाली अक्षय ऊर्जा के संग्रह और प्रयोग के साधन दिए हैं, ताकि हम खनिज तेलों और कोयले का प्रयोग छोड़ सकें। अब यदि हम जानबूझकर तेल और कोयला जलाते रहें और अक्षय ऊर्जा के विकल्प नहीं अपनाएं, तो इसमें दोष किसका है? आप कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास से जुड़ी ताकतें हमें साफ विकल्पों की तरफ जाने से रोकती हैं, लेकिन उनके रोके जाने पर रुकना या न रुकना तो हमारे अपने हाथों में है।
अभ्यास चार की इस बहस को अब आप फिर से सुनेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को ही विकास मानकर पूरी दुनिया में औद्योगीकरण और व्यापार को बढ़ावा दिया गया। जनता के लिए जरूरत के अनुसार उत्पादन की जगह अति उत्पादन करके बाजारों को भर दिया गया। यह कहा गया था कि औद्योगीकरण में ही दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन जो कुछ हुआ उसने यह सिद्ध किया कि औद्योगीकरण समाधान नहीं बल्कि खुद एक समस्या है। पर्याप्त उत्पादन के बावजूद भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं दुनिया की आधी आबादी को नसीब नहीं हैं। अधिकाधिक मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण और उद्योगों को सस्ती कृषि उपज उपलब्ध कराने के लिए किसानों का शोषण किया जाता है, जो आर्थिक विषमता का एक प्रमुख कारण है।
आर्थिक विषमता वाली बात सही है, लेकिन दुनिया में इस समय ऐसा कोई देश नहीं है जिसने औद्योगिक विकास की जगह प्रकृति पर आधारित विकास के मार्ग पर चलकर उन्नति की हो। मंगोलिया, सूडान और माली जैसे जो देश औद्योगिक विकास और विश्व व्यापार की दौड़ में पीछे रहे, उनकी दशा औद्योगिक विकास में आगे रहने वाले देशों की तुलना में बहुत ही खराब है। अमरीका, यूरोप और भारत में आर्थिक विषमता भले बड़ी हो, लेकिन उसका कारण सभी का पिछड़े रह जाना नहीं, बल्कि कुछ का बहुत आगे निकल जाना और कुछ का बहुत पीछे रह जाना है। इसका सारा दोष समाजों और सरकारों को दिया जाना चाहिए, जो सामाजिक न्याय की नीतियों पर चलने और सबको समान अवसर देने में नाकाम रहे हैं।
औद्योगीकरण के लिए जल, जंगल, जमीन, समुद्र, खनिज और खनिज तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है, और ये संसाधन उन पर निर्भर आदिवासियों और किसानों से छीनकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। औद्योगीकरण की प्रक्रिया में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई गुना अधिक किसानों, दस्तकारों और कामगारों के रोजगार छीने जाते हैं। जीविका का आधार छीने जाने और मनुष्य के रूप में उपलब्ध जीवित ऊर्जा के बदले मशीनीकरण के बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है। अब कृत्रिम बुद्धि से चलने वाली चतुर मशीनों के विकास से और जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रवेश से रोबोट और क्लोन ही सारे काम करने लगेंगे और बेरोजगारी का संकट और भी बढ़ेगा।
प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत तो हर तरह के विकास के लिए होती है। प्रकृति के साथ जीवन बिताने की बातें करना आसान है, पर एक बार जरा औद्योगिक विकास से मिली सारी सुख सुविधाओं के बिना जीकर तो दिखाइए। रही मशीनीकरण से बेरोजगारी बढ़ने की बात, तो हम सब जानते हैं कि कारखाने बनने से रोजगार घटे नहीं, बढ़े हैं। खेती और दस्तकारी करने वाले करोड़ों लोगों को उद्योगों में काम मिला। जब चतुर मशीनें बनेंगी तो उन्हें चलाने और बनाने वाले प्रशिक्षित लोगों की जरूरत पड़ने लगेगी। रोजगार कम नहीं होंगे, उनके लिए दक्षता का स्तर बढ़ता जाएगा।
लेकिन औद्योगीकरण की अंधी दौड़ ने सबसे बड़ा नुकसान हमारे पर्यावरण का किया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु में परिवर्तन लाकर औद्योगीकरण ने हमारी पृथ्वी के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है। बदलते मौसमों के कारण खेती भी प्रभावित हो रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है। पूरी दुनिया प्रदूषण के संकट और जल संकट से जूझ रही है। विडंबना की बात यह है कि लोग और उनकी सरकारें ये सब जानती हैं, फिर भी पर्यावरण को बचाने के लिए उद्योग संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ताकत के सामने लाचार साबित हो रही हैं।
ये सही है कि औद्योगिक विकास जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के विनाश का प्रमुख कारण है, फिर भी उसकी दिशा के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जिस विज्ञान से हमें जलवायु में हो रहे परिवर्तन का और पर्यावरण को हो रही क्षति का पता चला है, उसी विज्ञान ने पानी, पवन और सूर्य से मिलने वाली अक्षय ऊर्जा के संग्रह और प्रयोग के साधन दिए हैं, ताकि हम खनिज तेलों और कोयले का प्रयोग छोड़ सकें। अब यदि हम जानबूझकर तेल और कोयला जलाते रहें और अक्षय ऊर्जा के विकल्प नहीं अपनाएं, तो इसमें दोष किसका है? आप कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास से जुड़ी ताकतें हमें साफ विकल्पों की तरफ जाने से रोकती हैं, लेकिन उनके रोके जाने पर रुकना या न रुकना तो हमारे अपने हाथों में है।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
This is the end of the examination.